वेत्तारं कर्मभूतां यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, नमस्ते। आज जो है वो अपने को तत्वार सूत्र का छठा अध्याय पढ़ना है। हमने अभी तक चार अध्यायों में जीव तत्व का अध्ययन किया और पांचवें अध्याय में अजीव तत्व का। इस छठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। आश्रव किसे कहते हैं? जिन परिणामों के द्वारा कर्म आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं या आत्मा में आते हैं, वो कहलाता है आश्रव। मैं सामान्य परिभाषा बताना चाह रहा था कि कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं, पर इसका अर्थ क्या है? हमें ऐसा लगता है कि कहीं कर्म हैं और उनको आना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आत्मा के प्रदेशों पर ही कर्म वर्गणाएं पुद्गल वर्गणाओं के रूप में विद्यमान रहती हैं। जब हम मन वचन काय की कोई भी क्रिया करते हैं और जैसे भी हमारी थॉट्स या फीलिंग होती हैं, विचार होते हैं, उस तरह से वे कर्म और हमारे साथ कार्मण वर्गणा के रूप में परिवर्तित होकर के जुड़ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ही आश्रव कहलाती है। जब आत्मा के साथ उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है तब उसे बंध कहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, इनमें कोई समय का भेद नहीं है कि पहले कर्म आएंगे फिर बाद में ठहरे रहेंगे फिर बाद में बंधेंगे। नहीं, आना और बंधना दोनों एक ही समय में होता रहता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखने की है। कहीं और अन्यत्र से कर्म नहीं आते हैं। आत्मा के प्रदेशों पर स्थित जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वे ही हमारे भावों के द्वारा, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा और कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती हैं। ये आश्रव दोनों प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। ये सारी चर्चा, और हम अपने जीवन में निरंतर जो मन वचन काय की क्रिया करते हैं और कोई ना कोई हमारे अंदर विचार चलता रहता है शुभ और अशुभ, वही हमारे अपने पूरे जीवन को निर्धारित करने में कारण बनता है। हम जैसा अपना जीवन जी रहे हैं और आगे हम कैसा जीवन जिएंगे, ये सारी चीजें इसी पर निर्भर करती हैं। हम वचन काय की कैसी शुभ अशुभ क्रिया करेंगे या हमारे अंदर जो विचार हैं वे शुभ और अशुभ किस तरह के हैं, हमने जो मनुष्य पर्याय पाई है उसके पीछे भी क्या कारण है, या हम आगे कोई अच्छी पर्याय पाना चाहते हैं तो हमें क्या एफर्ट करना चाहिए, इस अध्याय को समझ करके हमें इतनी बात अपने मन में जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। काय वांग मना कर्म योगा, काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। सामान्य रूप से योग के मायने ध्यान होता है, है? योगा विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस जिसमें होती हैं उसको भी योग कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन में, जैन आगम में काय वचन और मन, इनकी जो क्रिया है, इनका जो परिस्पंदन है, उसका नाम योग है। क्रिया के मायने यहां परिस्पंद है, वाइब्रेशन। ऐसा नहीं समझना कि जब हम बोलेंगे तभी वचन योग होगा। नहीं, वचन योग हमारे अंदर निरंतर चलता रहता है, हम बोलें या नहीं भी बोलें। दोनों स्थितियों में जो वचन का परिस्पंदन है, बोलने का जो प्रयत्न विशेष है, भले आप नहीं बोले लेकिन मन में जो बोलने का प्रयत्न विशेष है उसे ही उन्होंने वचन योग कहा है। सोचने का जो प्रयत्न विशेष है, उद्यम है, उसको मनोयोग कहा है। और कुछ करूं इस तरह का जो कहना चाहिए परिस्पंदन है, उद्यम है, वो कहलाता है काय योग। इस तरह ये मन वचन और काय तीनों का परिस्पंदन ही योग कहलाता है। साश्रव और योग से ही आश्रव होता है, या योग स्वयं ही आश्रव रूप है। जैसे ही परिस्पंदन हुआ और कर्म हमारे साथ आकर के संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। सुभा पुण्यश्या सुभा पापश्या, जब योग शुभ होता है तब पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग पाप का आश्रय कराने में कारण बनता है। वैसे तो देखा जाए तो शुभ और अशुभ कर्मों का कारण होने से योग भी शुभ अशुभ नहीं मानना चाहिए। जो शुभ कर्मों का आश्रय करे वो शुभ योग है, अशुभ कर्मों का आश्रय करे वो अशुभ योग है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक योग से दोनों प्रकार के कर्मों का आश्रय होता है। शुभ योग से भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म आते हैं और अशुभ योग से भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म आते हैं। ये बड़ी समझने की बात है, पर प्रधानता की अपेक्षा से शुभ योग से पुण्य कर्म और अशुभ योग से जो है वो पाप कर्म का आश्रय होता है, ऐसा इसमें कथन किया गया है। क्योंकि निरंतर जो भी मन वचन काय की शुभ अशुभ क्रिया अपन के द्वारा होती रहती, परिस्पंदन होता रहता, उससे सातों कर्म आते रहते हैं, सिर्फ एक आयु कर्म को छोड़ करके। बाकी सारे कर्मों का निरंतर अपने अंदर आगमन चलता रहता है, चाहे हम भली मन वचन काय की क्रिया करें या कि खोटी मन वचन काय की क्रिया करें, सारे कर्म आते हैं। इतना जरूर है कि जब बंध की प्रक्रिया होती है तो उस बंध में फर्क अवश्य आ जाता है, शुभ और अशुभ अपने मन वचन काय की परिस्पंदन की अपेक्षा से। कर्म सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा मानना है कि विशुद्ध परिणाम हो अगर तो शुभ कर्मों का जो अनुभाग है वो उत्कृष्ट होता है और अशुभ का जघन होता है। इसी तरह जब संक्लेश परिणाम होते हैं तो अशुभ कर्मों का अनुभाग उत्कृष्ट हो जाता है और शुभ कर्मों का अनुभाग जो है वो जघन हो जाता है। कुछ प्रकृतियां एक्सेप्शन है, बाकी ये सामान्य नियम लागू होता है। यानी इसका अपन सीधा अर्थ क्या समझें, शुभ योग से शुभ ही आएगा ऐसा नहीं, ये प्रधानता की अपेक्षा से है कि शुभ योग होगा तो शुभ आश्रय होगा, अशुभ योग होगा तो अशुभ आश्रय होगा, ये उस आश्रय की प्रधानता की अपेक्षा से कथन किया है। सकषाय कषायो सांपराय क्रिया पथियो, आश्रय दो प्रकार का होता है, शुभ अशुभ तो होता ही है, एक कषाय सहित होता है और एक कषाय से रहित भी होता है। दोनों स्थितियां हैं जिनमें कि आश्रय होता है। कषाय से सहित और कषाय से रहित जो आत्मा का योग है वो क्रम से क्या कहलाता है, सांप्रायिक और एरियापथ। जो कषाय सहित है आश्रय उसे सांप्रायिक आश्रय कहेंगे और जो कषाय से रहित अवस्था में मन वचन काय की परिस्पंदन से आश्रय होता है उसे एरियापथ आश्रय कहेंगे। संप्राय के मायने ही होता है कषाय, इसलिए कषाय सहित आश्रय का नाम सांप्रायिक आश्रय है और कषाय से रहित आश्रय का नाम एरियापथ आश्रय है। सांप्रायिक आश्रय कितने प्रकार से होता है इसके लिए एक सूत्र बना दिया। एरियापद आश्रय तो बहुत ऊंची अवस्था में होता है, कषाय से रहित अवस्था में, यानी 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में, और जहां तक कषाय है 10वें गुण स्थान तक, वहां तक तो सांप्रायिक आश्रय होता है। थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा अपने को कि कहां तक कषाय चलती है, कहां तक मोह का उदय रहता है, तो इसके लिए विभिन्न गुण स्थान है। क्या होता है कि जब अपनी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं रहती है तो मानिएगा अपने दर्शन मोह भी है और चारित्र मोह भी है, और जब अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा होती तो दर्शन मोह या तो क्षय को प्राप्त हो जाता है या क्षय उपशम हो जाता है या उपशम हो जाता है, लेकिन अभी अपने भीतर चारित्र नहीं आया है तो कषाय विद्यमान है। कषाय जितनी हटेंगी उतना चारित्र आएगा और फिर चारित्र के गुण स्थान है। शुरू के चार गुण स्थान तो अपने श्रद्धान और अश्रद्धान के हैं, दर्शन मोहिनी से संबंध रखने वाले। उसके बाद जैसे अपन ने देश व्रत ले लिए सम्यक दर्शन के साथ तो पांचवा गुण स्थान, महाव्रत ले लिए तो सातवां, नीचे उतरेंगे तो छठा, इस तरह महाव्रत के साथ छठा सातवां गुण स्थान, और फिर बाद में जब दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों को, विशेष रूप से चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से यदि हम उसका उपशम करते हैं तो फिर आठवां नौवां दसवां और ग्यारहवां गुणस्थान बनता है, और जब हम चारित्र मोहिनी का क्षपना करते हैं, क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर आठवां नौवां दसवां और सीधा बारहवां गुणस्थान होता है। ये थोड़ा सा अपने मन में एक रफ आइडिया बना करके चलें। तो दसवें गुणस्थान में जाकर के क्या होता है कि सारी कषायें चारित्र मोहिनी का पूरा या तो उपशम हो जाता है या कि क्षय हो जाता है। और उपशम होने के बाद ग्यारहवें में पहुंच जाते हैं तो उसको उपशांत कषाय कहते हैं, और उपशम होने के बाद बारहवें में पहुंचते हैं तो वो क्षीण कषाय कहलाता है। इस तरह इन गुण स्थानों के नाम बन जाते हैं ग्यारहवें बारहवें के। पर कहने का आशय ये है कि कषाय रहती हैं दसवें गुण स्थान तक, इसलिए ये जो सांप्रदायिक आश्रय है वो कषाय के साथ होने वाला आश्रय दसवें गुण स्थान तक रहता है। उसके बाद के जीवों में सिर्फ एकमात्र मन वचन काय के परिस्पंदन से जो कर्म आते हैं वो ऐरियापद आश्रय शेष रह जाता। ऐरियापद आश्रय की विशेषता यह है कि उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता, क्योंकि स्थिति और अनुभाग जो भी अपने कर्मों में ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी जो डिसाइड होती है वो हमारी अपनी फीलिंग्स, हमारे अपने थॉट्स से होती है, और हमारी अपनी जो मन वचन का है कि क्रियाएं चल रही हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो लोग एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग्स और दोनों के थॉट्स अगर अलग अलग हैं तो दोनों को जो अनुभाग और स्थिति है बिल्कुल अलग पड़ेगी। कर्म तो दोनों को समान रूप से आएंगे, लेकिन उनमें ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी हमारे थॉट्स और फीलिंग पर डिपेंड करती है। एक ही काम करने वाले 10 लोग हैं, प्रगान के लिए 25 लोग खड़े हुए, लेकिन सबके ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी कर्मों की अलग अलग बनेगी। जिसका जितना उत्साह होगा, जिसका जितना अर्थ होगा, फूड हैंडल करने वाले 50 लोग बैठे हैं जो कि भोजन बना रहे हैं, लेकिन सब उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में अलग अलग आश्रय करेंगे। ये चीज थोड़ी सी इसमें समझने की, पूरा जिंदगी अपनी इसी में निकल जाती, आश्रय और बंद में पूरी जिंदगी। बहुत थोड़े से अवसर जीवन में आते हैं जबकि हम संवर और निर्जरा कर पाते हैं, वरना यही प्रक्रिया चलती रहती, मन वचन काय का परिस्पंदन, कोई ना कोई बुरा और भला विचार ये चलता रहता। इसलिए इस प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। अलग से भी अपन इसको समझेंगे, पर अभी तो संक्षेप में इसको ऐसा समझें कि जो कषाय के साथ आश्रय होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, जो सांप्रदायिक आश्रय है वो इंद्रियों के द्वारा कषाय, अव्रत और क्रिया, 25 क्रियाएं होती हैं क्रम क्रम से, इनके भेद हैं, 5 इंद्रियां हैं, 4 कषायें हैं, 5 अव्रत हैं, पांचों इंद्रिय के अपेक्षा से बनेंगे और 25 क्रियाएं हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान कराने में कारण बनती है वो इंद्रिय है। कोई ना कोई इंद्रिय, कोई ना कोई शरीर होगा, उसमें इंद्रिय होगी, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि यहां जीवन है। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय है तो इसका मतलब एक इंद्रिय जीव वहां पर है, इसलिए इंद्रिय को आत्मा की पहचान का चिन्ह कहा है। आत्मा तो सूक्ष्म है, लेकिन हम उसके सेंस ऑर्गन से पता कर सकते हैं किसी भी जीव के कि उसके अंदर आत्मा है, चेतना है। कषाय से सब लोग परिचित हैं। पाप से विरक्त होने का नाम व्रत है, और पाप में आसक्त होना ही अव्रत है। 5 ही पाप हैं, इसलिए वे अव्रत कहलाएंगे, और क्रियाएं 25 हैं। ये जरा एक एक मिनट में समझने की क्रियाएं हैं। जब अपन सच्चे देवगुरु शास्त्र की पूजा आदि करते हैं तो ये सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया है, इसको सम्यक क्रिया कहते हैं। इससे शुभ का आश्रय होता है। देखिएगा, सम्यक दर्शन को बढ़ाने की क्रिया है सच्चे देवगुरु शास्त्र की पूजा करना और उनकी भक्ति इत्यादि करना, और मिथ्यात् क्रिया यानी सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा अन्य सभी की उपासना करना, ये सब जो है मिथ्यात् को बढ़ाने वाली क्रिया है। प्रयोग किया, आने जाने में होने वाली जो शरीर की प्रवृत्ति है, शुभ और अशुभ दोनों रूप हो सकती है, वो प्रयोग क्रिया है। संयम की उपेक्षा करके असंयम का समर्थन करते हैं जब, तब फिर वो समाधान क्रिया कहलाती, इससे भी पाप का आश्रय होता है। सावधानी पूर्वक चलने की क्रिया को ऐरियापद क्रिया कहते हैं, और क्रोध के आवेश में होकर के जो क्रिया की जाती है वो प्रादोष की क्रिया कहलाती है, और पाप भाव से युक्त होकर के कायी करने का प्रयास करते हैं वो काय की क्रिया कहलाती। हिंसक उपकरणों को अपने पास संचित करके रखते हैं, ये जो क्रिया है संचय करने की कि पिस्टल रख लो, तो ये आधिकरणी की क्रिया कहलाएगी, जबकि कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन आपने उसको ग्रहण करने की जो क्रिया की है, हिंसक उपकरणों को अपने पास में रखने के लिए जो क्रिया किया है, जो प्रयत्न किया है, उससे भी पाप का आश्रय निरंतर होता रहता 24 घंटे। इसी वजह से तो घर गृहस्थी में आश्रय और बंध की क्रिया सघन रूप से निरंतर चलती रहती है। हम उसको जब तक लिमिटेड नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी मर्यादा नहीं करेंगे, तब तक अनंत पाप हमारे लिए बना ही रहता, निरंतर आश्रय होता रहता है। पारिताप की क्रिया, प्राणियों को पीड़ा देने की जो क्रिया की जाती है वो पारिताप की, प्राणातिपात, फिर तो प्राणियों को घात ही कर दिया तो उसकी वो जो क्रिया है वो प्राणातिपात क्रिया कहलाएगी। सुंदर रूप देखने के अभिप्राय ये साइट देख करके आए, वो जरा दर्शनीय स्थल है उसको घूम करके आए, जरा ये देख लें, अरे सुनते हैं कि बढ़िया गार्डन बना हुआ है, जरा एक आध दिन होके आते हैं, ये सब क्या है, ये दर्शन क्रिया है, इससे भी पाप का ही आश्रय होता है। मंदिर के दर्शन करना अलग बात है और किसी भी साइट पर जाकर के दर्शनीय स्थल पर भ्रमण करना, ये भी दर्शन क्रिया आश्रय में कारण बनती है। स्पर्शन क्रिया, स्पर्श करने योग्य वस्तु को स्पर्श करने की जो क्रिया है वो स्पर्शन क्रिया कहलाती। विभिन्न प्रकार के स्पर्श, ये देखें कैसा है, ये देखें कैसा है, छू करके देखो कपड़ा कैसा लग रहा है, हाँ ठीक है, खरीदने तो गए थे और इतनी सारी आश्रय करके आ गए, लिया एक छू छू के सब देख लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत काय का ये बहुत सुंदर है ये, हाँ ठीक है सुंदर है, सुरखा रहने दो, बन गए कर्म, नहीं बच सकते, इतना इतना मैंने डेलिकेट मामला है, जरा मैं अब प्रत्यय की क्रिया, इंद्री विलास के नए नए साधन, आज यही हो रहा है, पांचों इंद्रियों के जितने बढ़िया से बढ़िया साधन हो सकते लुभाव ने वो सब बनाए भी जा रहे हैं और अपन उससे अट्रैक्ट भी होते हैं, ये सब प्रत्यय की क्रिया कहती। आने जाने और रहने के स्थान में मलमूत्र का विसर्जन कर देना कहीं भी, ये समंतानुपात क्रिया कहलाती है, इससे भी पाप का आश्रय होता। नहीं देखी नहीं सोधी हुई जमीन पर कुछ भी सामग्री रख देना, ये अनाभोग क्रिया कहलाती। जो दूसरे के करने योग क्रिया है वो स्वयं कर लेना, ये स्वहस्त क्रिया कहलाती है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस पर बहुत डिस्कशन हुआ कि कौन सी क्रिया, अब जैसे कि कपड़े धोने वाले धोबी का काम अपन ने कर लिया, तो ये अगर इसमें शामिल करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेविंग घर में कर ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसमें यह है कि दूसरे को करने का कह करके और फिर स्वयं कर लिया तो दूसरे को संक्लेश पहुंचा कि नहीं, ये अर्थ ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है इसमें, पर फिर भी मैं आपसे दोनों बातें कह दी मैंने, अभी डिसीजन इसमें बहुत डिस्कशन के बाद भी नहीं हो पाया है। निसर्ग क्रिया, पाप के समर्थन की क्रिया करना, हाँ ऐसी क्रिया करना जिससे पाप का समर्थन हो, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, हाँ तुम तो लगे रहो बिल्कुल बढ़िया, कुछ भी नहीं बैठे बैठे इशारा कर दिया कि हाँ बहुत बढ़िया करो और ये कहलाएगी निसर्ग क्रिया। विदारण क्रिया, दूसरे के पाप को उजागर करने की क्रिया, ये विदारण क्रिया कहलाती। इससे दूसरे का तो जो होगा सो हो गई, अपना तो अहित हो ही गया, जबकि इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता लोगों का दूसरे के बारे में। आज्ञा व्यापादनी, शास्त्रोक्त क्रिया का पालन ना कर पाने के कारण उसका विपरीत प्ररूपण कर देना कि नहीं लिखा तो ऐसे ही है, अपने मन से जबकि लिखा हुआ शास्त्र में कुछ और है, ये क्रिया आज्ञा व्यापादनी क्रिया है, अनाकांक्ष क्रिया। शास्त्रोक्त क्रिया का पालन तो करना लेकिन अनादर पूर्वक करना, बेमन से करना, इससे भी आश्रय होता है। पाप क्रिया स्वयं करना, दूसरे को करते देख करके खुश होना, ये आरंभ क्रिया कहलाती। परिग्रह नष्ट ना हो इसके लिए बड़े प्रबंध करते हैं जो अपन, वो सब परिग्रह की क्रिया है, परिग्रह के संरक्षण के सारे उपाय आश्रय के कारण हैं। ज्ञान और दर्शन के विषय में छल पूर्वक व्यवहार करना ये भी माया क्रिया है, और मिथ्या दर्शन के पोषक पुरुषों की प्रशंसा करना ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। वहां मिथ्या क्रिया थी अर्थात उनकी उपासना करना, और यहाँ मिथ्या दर्शन क्रिया में कह रहे हैं उनका पोषण करना, उनके लिए बढ़ावा देना, उनकी प्रशंसा करना। त्याग के परिणाम नहीं होना ये अप्रत्याख्यान क्रिया है, इससे भी पाप का बंध निरंतर चलता रहता है। जो अपन कहते ना कि हमने त्याग नहीं किया तो क्या हम और हम खाते भी नहीं है तो हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, हाँ कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके त्याग नहीं करने के परिणामों से निरंतर आश्रय हो रहा है। हाँ भले ही आप उन चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं पर आपने उनको त्यागा नहीं है तो उनके माध्यम से निरंतर आश्रय होता चला जा रहा है, ये चीज जो है। फिर आश्रय में भी भेद, मैं थोड़ा सा जोर से बोलता हूं तो इसको तकलीफ होने लगती है, हौ कर देता वो एकदम क्या हो गया, थोड़ा सा दूर होना चाहिए ना। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त तद विशेषा। आश्रय में विशेषता कैसे आती है, विभिन्नता कैसे आती है, तो कहते तीव्र भाव से किए गए कर्म, ज्ञात और अज्ञात भाव से किए गए, तीव्र और मंद दोनों, सॉरी तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण कैसा है, किस आधार से आपने किया है, किसके सहारे से कार्य किया है और आपकी सामर्थ्य कैसी है, इस पर निर्भर करता है आश्रय। जैसे कि तीव्र भाव बहुत अधिक प्रबलता से, बहुत इंटेंसिटी बहुत है, चाहे कषाय की हो, किसी भी काम को करने की हो, उत्कट जो भावना होती है वो कहलाएगी तीव्र भाव। पाप रूप भी हो सकते हैं और पुण्य रूप भी हो सकते, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। बहुत उत्साह के साथ पूजा कर रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ पाप कर रहे हैं, दोनों ही चीजें हो सकती। बहुत तीव्रता के साथ, बहुत आशक्त होकर के वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं तो ज्यादा पाप होगा, और अनाशक्त भाव से ठीक है परोस दो, जो बना है ठीक है, ये क्यों नहीं बना ले, वहीं पर हो गया। तीव्र भाव है इसका मतलब अत्यंत आशक्ति है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है इसमें अपने परिणाम टटोलने में, कि कहां तीव्र हो गए कहां पर मंद। मंद परिणाम क्या कहलाएंगे, जिसमें कि संतोष पूर्वक जितना है उसमें ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है तो ठीक, ऐसा है तो ठीक, चलो काम निकालो आगे बढ़ो, कौन झगड़े में पड़े, शांत परिणाम, मंद परिणाम कहलाएंगे। तो आश्रय पुण्य में ज्यादा होगा, पाप में कमती होगा। ज्ञात भाव, जानबूझ करके जो प्रवृत्ति करते हैं वो ज्ञात भाव कहलाता है। अज्ञात भाव में अहंकार वश कई बार हो जाता है या कि प्रमाद वश हो जाता है, वो सब अज्ञात भाव कहलाएगा। अज्ञात का मतलब है कि बिना जाने ऐसा नहीं लेना, अहंकार वश कर लेते हैं कई बार, वो भी अज्ञात भाव कहलाएगा। जैसे कि अपन क्या कहें उसको, किस तरह से कहें, कई बार ऐसा नहीं होता कि अपने संस्कार वैसे पड़ जाते हैं और अपने मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाती जिससे दूसरे को चोट पहुंच जाती, फिर अपन बाद में कहते कि देखो देखो हमारा ऐसा आशय नहीं था, हमारा ऐसा भाव नहीं था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद भी मेरे से ऐसी बात निकल गई, बहुत सौरव फील करते हैं अपन। वो क्या है, वो अज्ञात भाव। ऐसी भी क्रिया हो जाती है जबकि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी हमारे संस्कार वश, अहंकार वश, प्रमाद वश इस प्रकार की क्रिया हो जाती, वो अज्ञात भाव से होने वाला आश्रय है। अधिकरण, जीव और अजीव अधिकरण जिसके माध्यम से होता है, किसी व्यक्ति को देख करके अपने भीतर अच्छे भाव उठते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके बुरे भाव उठते हैं, ये उस जीव के माध्यम से हो गए कि नहीं, तो ये जीव आधार बन गया। इसी तरह फोटोग्राफ्स, अब अगर वीतरागी भगवान का फोटो देखेंगे तो दूसरे भाव आएंगे, और रागी द्वेषी का फोटो देखेंगे, घृणास्पद फोटो देखेंगे, तो उस फोटो के माध्यम, उस अजीब के माध्यम से, अगर कहीं पर बंदूकें रखी होंगी इतनी सारी तो बंदूक देखते समय अरे वाह तो वीरता आएगी एकदम, हैं, वीर रस की कविता सुनने से वीरता आएगी, ये सब ये अजीब अधिकरण बनेगा जिसके माध्यम से हमारे भाव बनते हैं, जीव के माध्यम से या कि अजीब के माध्यम से, वो सब अधिकरण। आगे कहेंगे कि अधिकरण दो प्रकार का होता, जीव और अजीब अधिकरण। वीर शक्ति विशेष, दो आदमी हैं और एक बलवान है और दूसरा कमजोर है, और कमजोर व्यक्ति जो है वो कितना पाप करेगा। जैसे कि मां लोग अगर पाप करें तो कहां तक जाएंगे, छठे नरक तक, और पुरुष अगर पाप करे अधिकतम तो सातवें नरक तक चला जाए। इसी तरह पुण्य के मामले में है, दोनों जगह इसी तरह से होता। हमारी शक्ति पर भी निर्भर करता है कि हम कितना पुण्य और पाप कर पाएंगे, दोनों ही चीजें हैं। तो इसलिए वीर भी कारण बनता है। एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो अगर काम करना चाहे तो अच्छे काम भी बहुत कर सकता है, और वो करना चाहे तो बुरे काम भी बहुत तेजी से कर सकता है। तो उस सामर्थ्य पर निर्भर करता है हमारा कर्मों का आश्रय। उसमें विशेषता हमारे बल के अनुसार भी आती है। वज्रपृषभ नारद सहनन हो तो साथ में नरक में भी जा सकते और मोक्ष भी जा सकते, भैया ऐसा समझने की कोशिश करें। आश्रय अधिकरणम जीवा जीवा, इसमें जो अधिकरण है वो दो प्रकार का है, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। आद्यम संभ्रम्भ समारंभ आरंभ योग कृत कारतानुमत कषाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चैकशा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण दोनों के लिए दो सूत्रों में बता रहे हैं। जो भी जीव के माध्यम से होता है वो तो संभ्रम, समारंभ और आरंभ, इनके भेद से तीन प्रकार का है। मन वचन काय के अपेक्षा से तीन प्रकार का है, कृत कार्य तन्मूदना की अपेक्षा से तीन प्रकार का है, और कषाय के भेद से चार प्रकार का है। इन सबको मल्टीपल करेंगे तो 108 हो जाते हैं। ये सब जीवाधिकरण है। अपन किसी भी चीज को प्लान करते हैं, फिर मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर एक्शन शुरू कर देते हैं, स्वयं करते हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, शरीर से करते हैं, स्वयं करते हैं, दूसरे से कराते हैं, कोई करता है तो उसका समर्थन करते हैं, और कोई ना कोई क्रोध मान माया लोभ से वशीभूत होकर करते हैं। ये सब जो है जीवाधिकरण कहलाएगा। अजीवाधिकरण में तो विभिन्न प्रकार की रचनाएं, निर्वर्तना कहते हैं रचना करने को, और निक्षेप कहते हैं रखने उठाने को, और संयोग मतलब टू कंबाइन, चीजों को मिक्सअप करना, और निसर्ग, निसर्ग मतलब जिस तरह का बिहेवियर हमारा होगा, जिस तरह का हम प्रवर्तन करेंगे उसको प्रवर्तन भी कहते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं, ये कहलाता। इस ये सब अजीवाधिकरण है। अब निर्वर्तना में जो है पांचों शरीर हैं, मन वचन काय है, श्वासोच्छ्वास है, इन सब की जो आंतरिक रचना है वो भी हमारे आश्रम में कारण बनती है, और बाह्य में जो हम कास्ट कर्म, पुस्त कर्म या चित्र इत्यादि जो भी बाहर में क्रिया करते हैं, निर्जीव जो है अजीव, वो सब हमारे परिणामों में निमित्त बनते हैं। बढ़िया सा कवर है, मन प्रसन्न हो जाएगा, फटा खराब सा गंदा सा कवर है, मन कैसा हो जाएगा, होएगा कि नहीं, अब बताओ उसने क्या करा। लेकिन ठीक है, जैसी संरचना है उस संरचना को देख करके मन पर असर पड़ा कि नहीं, आश्रम में फर्क आया कि नहीं आया, इतना। तो इस तरह से ये निर्वर्तना कहलाती। चीजों की विभिन्न प्रकार की जो संरचना है वो भी हमारे मन को भले बुरे भाव उत्पन्न करने में निमित्त बन जाती है, इसलिए उसको अजीव अधिकरण कहते हैं। वस्तुओं को रखने उठाने की क्रिया में भी हमारे अंदर के भाव अलग अलग ढंग से परिवर्तित होते हैं, इसलिए वह भी हमारे आश्रम में कारण बनती है। चीजों को मिला करके, महाराज इसमें ये मिला करके खाओ, बहुत बढ़िया टेस्टी लगेगा। हाँ लगेगा तो टेस्टी, लेकिन वो जो मिलाने का जो भाव है, अजीब चीजें मिल रही हैं लेकिन भीतर भीतर तो अलग, ये चीज इसमें मिल जाएगी तो वो मजा आएगा, आ गया मजा, आश्रय तो हो ही गया। हाँ, वहां तो अभी मिली नहीं है, मजा तो आएगा आपके लिए, इसमें ये मिला के खाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। अब बताओ वो चीजें मिल रही हैं और भीतर आश्रय हो रहा है, ये इसलिए संयोग, भक्तपान संयोग, प्रतिकूल अनुकूल सब प्रकार के आहार को जो मिला करके अपन करते हैं, या कि हम लोगों के लिए दिया हुआ है आचार्य भगवंतों ने कि कमंडलू और पीछी है आपके पास में, और ये शरीर भी उपकरण है, जब यहां से उठो इस वातावरण से तो इसको परमार्जित करके उठो, क्योंकि इस वातावरण में जो जीव आपके शरीर के आश्रित हैं 10 कदम आगे जाने पर वो हो सकता है कि मर जाएंगे, अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे आप तो ये आपके लिए और आश्रय का कारण बनेगा। गर्म स्थान से उठकर ठंडे स्थान में गए तो कहते कि पीछी झड़ा लो, शरीर को पूरा झड़ा लो, क्योंकि गर्म स्थान में ठंडे स्थान वाले जीवों का घात होगा अगर सावधानी नहीं रखी आपने, अजीव के माध्यम से होने वाला आश्रय। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, संयोग के अंतर्गत। ठंडे कमंडलों से गर्म पीछी मत लगाना, आप बताइए, गर्म पीछी अगर धूप में बैठे तो गर्म हो गई पीछी, वो कमंडल रखा हुआ है उसके पीछी लगा, नहीं, तब तो जो है ये संयोग ठंडे गर्म का हो गया, अब इसमें भी दोष लगेगा। उसको थोड़ा वेट करो, उसको भी गर्म में रख दो, या फिर आप आकर के पहले ठंडे में रुको 5 मिनट, फिर उसके बाद उस पर उठाकर कमंडल को फिर चलो, इतनी सावधानी बहुत। इतनी दो चीजों में सोचो आप, और आपके पास कितनी सारी है, उनके उठा धरी, उनके मिलान जुलान में कितना कर्मों का आश्रय होता होगा कि नहीं होता होगा, निरंतर चलता रहता, इससे कितना सूक्ष्म है मतलब। और शरीर है, है? वो तो है ही, अब सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा। लेकिन अपन को मान लो धूप में बैठना है तो अपन तो धूप में बैठ गए, अब पिछी लगा के और धूप में बैठ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये भी गर्म हो जाएगी, शरीर भी गर्म हो जाएगी, लेकिन कमंडल तो रखा था ठंडे में, अब लघुशंका का जाना है तो आप ठंडे में आओ, पिछी लगा करके पहले थोड़े रुको, फिर बाद में उस पिछी को कमंडल पर लगा करके फिर कमंडल उठाओ, ये कह रहे हूं। इतनी तो सावधानी है, नहीं तो और क्या, दिन भर नहीं तो आश्रय तो हो ही रहा भैया, कोई ऐसा तो है नहीं, रुका तो है नहीं, वो तो निरंतर चल रहा, छोटी छोटी चीजों में अगर सावधानी है तो कमती होगा, और लापरवाही है अत्यंत होगा, बस इतना ही है उसमें कि जो जितना अलर्ट है वो उतना कम आश्रय करेगा, जो असावधान है तो ज्यादा आश्रय होगा। निसर्ग शरीर की जो जो प्रवर्तन है, जिस तरह आप शरीर को मूवमेंट देंगे, वचन को जिस तरह से प्रयोग करेंगे और अपने मन का जिस तरह जिन विचारों में लगाएंगे आप, उस सब से भी अलग अलग ये सब अधिकरण बनेंगे जिसके माध्यम से भी आश्रय होगा। अब कह रहे हैं कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं और ये बहुत जरूरी है समझना कि किन परिणामों से कौन से कर्म बंधते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री से कहा करते थे, आचार्य श्री हम लोगों को सुनाते हैं कि हमेशा साल भर में एक बार साधु और श्रावक दोनों को 6 अध्याय को पढ़ लेना चाहिए, वर्ष में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि मालूम पड़ता रहे कि मेरे कौन से परिणाम से कौन से कर्म बंधते हैं। ये याद रहे कि ऐसे परिणाम करूंगा तो ऐसे कर्म बंधेंगे। और श्रावक के लिए 7वां अध्याय वर्ष में एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 7वें अध्याय में श्रावक को क्या करना है इसकी हिदायत दी गई है उसके व्रतों के पालन के लिए। और 6ठा अध्याय साधु और श्रावक दोनों को ही साल में एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा है ये 6ठा अध्याय, जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर अगर कमती ज्ञान है तो हमने क्या करा होगा जिससे कि ज्ञानावरण बंधा होगा, और अगर हमें अच्छा ज्ञान मिला है तो हमने पहले ऐसा क्या करा होगा जिससे कि ज्ञान का इतना शोभसम हो गया, और इतना ही नहीं आगे हमें कैसा करना है और हम वर्तमान में कैसा कर रहे हैं, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि आगे कैसे कर्म बंधेंगे। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग, ये जो है ज्ञान और ऐसा नहीं करना, अर्थात तत्व ज्ञान में हर्ष का अभाव होना ये प्रदोष है, इससे ज्ञानावरण कर्म बंधता है। अच्छा बढ़िया ज्ञान है किसी का और अच्छा बढ़िया वो ज्ञान दे भी रहा है, फिर भी कोई उत्साह नहीं है, कोई हर्ष नहीं है मन में, बल्कि भीतर ही भीतर, और लिखा है उन्होंने कि अंतरंग में जलन होना कि मैं इसमें कहां कैसे इसको नीचा दिखा दूं। हाँ, ये प्रदोष कहलाता है। बैठा बैठे बैठे वहीं पर अलग अलग परिणाम बनेंगे, सभा में बैठे हुए 1000 लोग बैठे हुए हैं और तत्व ज्ञान का प्ररूपण हो रहा है, अच्छा भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर, क्योंकि उस व्यक्ति से अगर द्वेष भाव है तो उसके द्वारा किए गए तत्व प्ररूपण में भी द्वेष उत्पन्न हो जाए, ये प्रदोष। इससे क्या होता, अपना ही ज्ञान ढक जाएगा। ज्ञानावरणी कर्म निहनव, ज्ञान की बात मालूम है, पूछने पर नहीं बताना, हाँ हमें नहीं मालूम, पुस्तक है आपके पास, नहीं हमारे पास, और है जबकि, ये ज्ञान आपने कहां से पाया, हमने अपने मन से पाया, गुरु का नाम छिपा लिया, शास्त्र का नाम छिपा लिया, बताने से इनकार कर दिया, ये सब जो है निहनव कहलाएगा, इससे हमारा अपना ज्ञान ढकता है, ज्ञानावरणी कर्म बंधता है। मात्सरी, दूसरे को जानकारी होते हुए भी ज्यादा ना मालूम पड़ जाए इसलिए नहीं बताना। हाँ, ईर्ष्यावश, एक तो पूछने पर कि किस किताब से पढ़ा, किताब का नाम छिपा लिया, और दूसरा दूसरे ने मांगी किताब तो नहीं दी, क्यों, इसका ज्ञान बढ़ ना जाए, या कि ये वाली किताब है आपके पास, है तो, लेकिन उसमें कोई विशेष नहीं है, आप क्या पढ़ेंगे, उसमें कोई विशेष नहीं है, मतलब उसको उस किताब के प्रति विमुख कर दिया ताकि वो मांगे नहीं। हाँ, ये सारी चीजें, ये मात्सरी कहलाता, जेलस जिसको अपन बोलते हैं, भाव क्या है कि दूसरा हमसे ज्यादा ज्ञानवान ना हो जावे, इसलिए जानकारी होते हुए भी छिपाल, ईर्ष्यावश दूसरे को नहीं बताना। अंतराय, ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के साधनों में बाधा डालना, किताब फाड़ दी, लाइट बंद कर दी, सो जाओ, अब टाइम हो गया, क्या दिन भर पढ़ते रहते हो, ले वो अपना उद्यम वो कर रहा है। मैं तो आश्चर्य करता हूं जब लोग ऐसा कहते हैं, तो मैं सोचता हूं ठीक है, अरे महाराज आप दिन भर जो है पढ़ते ही रहते हैं और अब क्या, बहुत मेहनत करते हैं इसीलिए तो जो है आप ऐसे कमजोर हैं, आप जरा आराम किया करें, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप ऐसा करके, विचार करने की चीज है, अंतराय डाल दिया आपने। ये जरूर कहो कि क्या महाराज आप राग द्वेष की चर्चा में लगे, थोड़ा धर्म ध्यान करो,
हाँ
नहीं, धर्म ध्यान कर रहे हैं तो क्या आप दिन भर ही लगे रहते हैं, बस यहां से उठे और वहां फिर शुरू हो गया, वहां से उठे वहां फिर, तो क्या करें, राग द्वेष करें? नहीं, राग द्वेष की चर्चा के लिए वक्त ही नहीं मिलना चाहिए, धर्म चर्चा सिर्फ और कोई नहीं। या फिर चुप, या फिर अपना पढ़ो, या फिर बोलो तो सिर्फ धर्म के वचन ही बोलो, उसके अलावा जो भी बोला जाएगा वो सब राग द्वेष से युक्त होगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, इससे ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के साधनों में बाधा डालना, रोक देना किसी को, अपना ही ज्ञान ढकेगा और दूसरे के द्वारा दी गई जानकारी को आदर ना करते हुए शरीर और वाणी दोनों से निषेध करना, कोई बात नहीं जम रही तो ठीक है ऐसे ही चलता है, शरीर से भी ऐसे और वाणी दूसरे बाजू वाले से देखा ऐसे ही है, कुछ बताता रहते नहीं, प्ररूपण करने बैठ गए भीतर अपने आप चुपचाप, किसी को पता नहीं लगा। ये क्या है, ये आसाधना है ज्ञान की, ज्ञान और ज्ञानवान, दूसरे के द्वारा जो जानकारी दी जा रही उसके प्रति कोई आदर नहीं है बल्कि अनादर का भाव है, शरीर और वाणी से दोनों से अनादर कर दिया, उपघात, सही ज्ञान में भी दोष लगा देना, ये उसे गलत साबित कर देना, ये फिर तो उसका ज्ञान का उपघात ही हो गया। आसाधना में तो सिर्फ अनादर हुआ था और उपघात में ज्ञान को अज्ञान कह दिया और उसकी उसको नष्ट ही कर दिया, इससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों बंधते हैं। मैं इस किताब को भी लेके आया था, आज आपका कैसा मन है, मैं 4 बजे से बात तक भी करते रहूं तो चलेगा? बढ़िया, अच्छे लोग हैं, नहीं तो कहते कि नहीं और दूसरी बात करवा लो, धर्म की बात मत करवाओ। तो आज इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जानने के योग्य हैं और एक दिन में तो सब नहीं जाना जा सकता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको संक्षेप में कहूं। राजवार्तिक में, तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने, और इतने ये तो अपन ने 5-6 कारण पढ़े, बहुत सारे कारण दिए हैं, उन पर भी थोड़ा सा अपन विचार करें। आचार्य और उपाध्याय के प्रतिकूल चलना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के बंध में क्या कारण बनता है? आचार्य और उपाध्याय के प्रतिकूल चलना, अकाल में स्वाध्याय करना, अश्रद्धा भाव से स्वाध्याय करना, अभ्यास करने में आलस करना, अनादर से अर्थ सुनना, तीर्थ उपरोध दिव्य ध्वनि के समय स्वयं व्याख्यान करने बैठ जाना, सभा में वक्ता अपना स्वाध्याय कर रहा है वहीं पीछे बैठ करके दूसरे को समझाने लग जाना, क्या आपस में गप्पा करने लग जाना, हाँ इधर तो महाराज जी से बात कर रहे हैं दो लोग और वहां दो लोग सटे हैं अपने आराम से चर्चा में, ये क्या है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसको भी अपन पढ़ लें, व्याख्या दूसरा कर रहा है और उस समय अपन आपस में और बात करने लगे हैं, तो वो ज्ञानावरणी कर। आचार्यी हम लोगों को पहले टोक देते थे, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, आचार्यी पढ़ा रहे और अब कोई चीज बढ़िया सी लगी या कि कोई चीज समझ में नहीं तो बाजू वाले से, तो वो कहते थे बाजू वाले से क्यों, मेरे से पूछो ना, अच्छी लगी तो जोर से कहो कि महाराज बहुत आनंद आ गया अच्छी लगी, और नहीं लगी समझ में नहीं आई महाराज समझ में नहीं आई हाथ ऊंचा करके, बाजू वाले से क्यों, उससे तुम्हारे ज्ञानावरण बंधेगा, क्योंकि उपदेशक के मन में संक्लेश होगा कि ये दोनों क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आपके मन में आपके अंदर भी बंद होगा ज्ञानावरण कर्म का, इतना सूक्ष्म आचार्यों को बहुश्रुत पने का गर्व करना, अरे मैं तो बहुत विद्वान, तो फिर अब अगली बार आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। मिथ्या उपदेश करना, बहुश्रुतवान का अपमान करना, अपने से अधिक ज्ञानवान का, अपने पक्ष का दुराग्रह करना, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। आचार्य जी कहते हैं कि जो मेरा सो सच्चा नहीं, जो सच्चा सो मेरा, ये दुराग्रह नहीं होना, स्वपक्ष के दुराग्रह बस असंबद्ध प्रलाप करने वाले तेजी में आ जाते हैं कई बार जब अपनी बात का समर्थन नहीं होता, तो ये क्या है, ये ज्ञानावरण कर्म का बंध है। सूत्र के विरुद्ध वचन बोलना, और जिसको ज्ञान नहीं है उससे ज्ञान प्राप्त करना, सच्चा ज्ञान जिसको नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि मैंने तुम्हें पढ़ाने लायक सब पढ़ा दिया, अब तुम्हें किसी और के पास, असयमी के पास तुम्हें पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, सयमी होकर के भी असयमी से अगर आप पढ़ते हैं, हाँ डिस्कशन करना अलग बात है, तत्व चर्चा करना अलग बात है, लेकिन उसे ऊंचे बिठा करके आपको नीचे बैठना पड़ेगा ज्ञान प्राप्ति के लिए, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है इसमें। हैं, शास्त्र बेच करके आजीविका चलाना ज्ञान आवरण कर्म का बंध का कारण है ये सब। और दर्शन आवरण के अलग से लिख दिए हैं, अपनी दृष्टि का घमंड होना। देखा 70 साल का हो गया अभी तक चश्मा नहीं लगा, क्या आंख है मेरी, ठीक है कर्म का बंध कर रहे हैं आप। और दूसरे की आंख इत्यादि को दूषण लगा देना, उसको नष्ट करने का भाव करना, दीर्घ निद्रा, बहुत सोना, दिन में सोना, इससे दर्शनावरणी कर्म बनता है। आलस, सम्यक दृष्टि के दूषण लगा देना, कुतीर्थ की प्रशंसा करना, हिंसा, और यति जनों के, मुनि जनों के प्रति ग्लानी का भाव होना, ये सब दर्शनावरणी बंध के कारण हैं, आश्रव के कारण हैं। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य असाता वेदनी कर्म बांधना हो तो जे उपाय करो। क्या स्वयं, दूसरे या दोनों में पीड़ा का अनुभव करना, दूसरे को भी पीड़ा करवा देना, शोक ताप आक्रंदन बध और परिदेवन, ये 6 हैं, इनके अर्थ अलग अलग दिए हैं। दुख के मायने हैं पीड़ा का अनुभव करना, और शोक किसी प्रिय वस्तु या उपकारी व्यक्ति, इसके वियोग में या उसके नष्ट होने पर, खोने पर जो उदासी आती है, जो सौरव फील करते हैं, वो कहलाता शोक। दुख से भी और शोक से भी और ज्यादा असाथा वेदनी बंधती है। और ताप, झूठा आरोप किसी ने लगा दिया तो उससे उत्पन्न होने पर जो मानसिक व्यथा होती है उसको बोलते हैं ताप, संताप जिसको कहते हैं। आक्रंदन वीपिंग, जोर जोर से विलाप करते हुए और रोना, ये आक्रंदन कहलाएगा। बध कर देना, दूसरे के प्राणों का घात कर देना, ये कहलाएगा बध। इससे भी स्वयं को असाता ही बनती है। और परिवेदन अर्थात प्रिय व्यक्ति के वियोग में उसके गुणों का स्मरण करते हुए जब करुणाप्रद रुदन किया जाता है तब वो कहलाएगा परिवेदन। इससे भी स्वयं को असाता ही बंधेगी। असाता के लिए आचार्य भगवंतों ने इसके अलावा भी और कारण लिखे हुए हैं, वो भी जानना चाहिए। बहुत सारे कारण, मैंने थोड़ा सा मेहनत नहीं करी, मेरी वो कॉपी जो है वो कहाँ रखी गई पता नहीं, तो मिली नहीं, नहीं तो मैंने इसमें से सब निकाल लिए थे। अब थोड़ी मेहनत करना पड़ रही है। अलग अलग दिए हुए हैं इसमें, अशुभ प्रयोग करना, दूसरे पर अपवाद लगाना, पैशून चुगली करना, इससे असाता का बंध होता है, अनुकंपा नहीं होना अर्थात दया का अभाव होना, और दूसरे को रुलाने में आनंद लेना, दूसरे के अंग उपांग का छेदन करना, भेदन करना, ताड़न करना, त्राशन करना, वाणी से ऐसी बात कह दी जिससे कि मर्म में मर्म घाती चोट पहुंच गई उसके लिए, शरीर के अलावा पहुंच गई मन में, वो सब तर्जन करना, भर्सन करना, तक्षण करना, विशोषण करना, बंधन करना, रोधन करना, मर्दन करना, दमन करना, ये सारी चीजें, दूसरे की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, संक्लेश हमेशा बनाए रखना, बहुत सारे कारण दिए हुए हैं इसमें। तो अपन लोग अगर गौर से देखें तो सिवाय असाता के आश्रव के बहुत थोड़े मौके पर साता के आश्रव करते हैं। देखा जाए तो इनको पढ़कर के यही लगता है कि 24 घंटे असाता का बंध कर रहे हैं, बहुत थोड़ी देर जो धर्म ध्यान इत्यादि करते हैं बस उतनी देर है कि असाता नहीं बंधती, साता का बंध होता, बाकी तो सब जितनी भी क्रियाएं हैं असाता के बंध में कारण बनती हैं। भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि, इसमें तो जो है वो दोनों तरह के पाठ मिलते हैं, तो मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ एग्जैक्टली संस्कृत में क्या होना चाहिए। परिदेवन शब्द होना चाहिए, परिदेवन शब्द है, परिवेदन जो है वो नहीं है, परिदेवन, परिदेवन शब्द है। मैंने एक जगह परिवेदन बोल दिया शायद ना, इसमें ठीक लिखा परिदेवन, हाँ परिदेवन शब्द है। भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति सौचमिति सद्वेश्यस्य, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा रखना, इससे साता बनती है। देखो व्रतीजनों के प्रति अनुकंपा रखना और ज्यादा साता बंधेगी। दान देना, सराग संयम, भले ही अंतरंग में अभी कषाय विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी संयम जितना बने उतना संयम का पालन कर रहे हैं ये सब जो है। और शांति, शांति अर्थात इन्होंने लिखा क्रोध आदि की मंदता होना। जब कषाय की मंदता होती उसको शांति बोलते हैं, उससे साता का बंध होता है। और शौच, शौच मतलब निर्लोभ होना। अपन इसके बारे में जब कर्म फिलॉसफी पढ़ेंगे तो एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मैं सोचता हूं, अभी तो संक्षेप में अपन पढ़ लें। जब दूसरे के दुख को देख करके अपना मन कप जावे और वैसा ही दुख अपने को हो वो कहलाती अनुकंपा। प्राणी मात्र के दुख को देख करके स्वयं भी वैसा ही अनुभव करने लगना, तब ये प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा हमारे लिए साता का बंध कराएगी। कई लोगों ने प्रश्न किया था कि महाराज जी के भी आंसू आ जाते हैं तो उनको तो असाता बंधेगी। हाँ, अरे भैया, जब किसी घटना विशेष को जिसमें किसी को दुख हो रहा है उसे पढ़ते हैं तब मन कैसा होने लगता, कैसे उसके दुख को दूर कर दूं, ये जो भाव है उसकी वजह से आने वाले आंसू तो साता के बंध में कारण है। मंदिर में बैठ करके हे भगवान मैंने बहुत अपराध किए, मैंने बहुत खोटे कर्म किए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, कौन की शरण पाऊं, और ऐसा कहते कहते आंसू बहने लगे, मन बहुत भाव विहल हो गया, साता का बंध होगा असाता का नहीं। और अपने पांच इंद्रिय और मन के विषय में थोड़ी कमी हो गई, किसी चीज का अभाव हो गया, अपनी प्रिय वस्तु का वियोग होगा, नष्ट हो गई, उसमें जो दुख होता है वो सब पाप का बंध करने वाला है। प्रियजनों के दो प्रकार के प्रियजन हैं, एक रागी हैं और एक वीतरागी हैं। अपने गुरु से दूर होने पर जो दुख महसूस होता वो सब साता के बंध का कारण। और अपने संसार के बढ़ाने वालों से संबंध विलग होने पर जो दुख होता उससे असाता का बंध। इसलिए बहुत यहां भूत व्रत्यनुकंपा दोनों लिखा हुआ है। व्रतीजनों के प्रति भी राग है और प्राणी मात्र के प्रति भी जो दया का भाव है वो सब साता के बंध का कारण होता है। दान देना दूसरे के और अपने उपकार के लिए समझते हैं सब लोग, और संयम का पालन करना, क्रोध आदि को मंद बनाए रखना, ये शांति है। और निर्लोभ प्रवृत्ति, अपन सोचते हैं कि अपने पास सुख सुविधा के खूब सारे साधन होंगे तो ज्यादा सुख होगा। वो कह रहे हैं कि जितने निर्लोभ होंगे उतना साता का बंध होगा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अपन सोचते हैं कि जितने सुख सुविधा के साधन जुड़ा लो, खूब परिग्रह जोड़ के रख लो, अच्छी साता रहेगी। वो कह रहे हैं कि इससे असाता बंधेगी। और जितना त्याग कर दोगे, जितना निर्लोभ प्रवृत्ति होगी उतनी ज्यादा साता का बंध होने वाला है। इसको अपन और भी इसमें क्या दिया हुआ है रहने दें, क्योंकि इसमें मैंने मेहनत नहीं करी इसमें ढूंढने की, जल्दी से ये निकाल के लाया मैं। इतना ही ठीक है, फिर अपन डिटेल में बाद में कर लेंगे, नहीं तो वैसे भी अपने पास कुल 10 मिनट बचे हुए हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली भगवान श्रुत धर्म सॉरी संघ धर्म और देवों का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद किसे कहते हैं? श्रेष्ठ जनों में जो दोष नहीं है उनमें उन दोषों की कल्पना करना, ये अवर्णवाद कहलाता है। पूज्य पुरुषों में या महापुरुषों में या महान लोगों में जो दोष नहीं है उनमें उन दोषों का आविष्करण करना, उन दोषों की कल्पना करना, ये कहलाएगा अवर्णवाद। केवली भगवान केवल ज्ञान के बाद आहार इत्यादि नहीं करते, लेकिन ऐसा कहना कि केवली भगवान को भी आहार करना पड़ता, ये जो है अवर्णवाद हो गया केवली भगवान का। और श्रुत का अवर्णवाद, ज्ञान जिन वाणी में तो लिखा हुआ है कि अहिंसा ही मार्ग है, मुनि और श्रावक दोनों के लिए अहिंसा करना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि नहीं, जिन वाणी में तो मांस इत्यादि खाने का भी विधान है। देखो इस तरह से आपने जिन वाणी में दोष लगा दिया उससे क्या होगा, उससे हमारा दर्शन मोहिनी कर्म बंधेगा, अर्थात हमें फिर सच्चा श्रद्धान नहीं हो पाएगा, सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। सम्यक दर्शन में बाधक हैं ये, सम्यक दर्शन होने में दर्शन मोहिनी के आश्रम में कारण बनते हैं। और संघ साधु के समूह को संघ कहते हैं, या कि मुनि आरिका श्रावक श्राविका ये संघ कहलाता है। तो ऐसा कह देना, अरे जी अभी इतने दुखी हैं, इनको का सुख मिलेगा, अभी तो काया सूख रही है, भोजन तो एक बार कर पा रहे हैं, इनको क्या मिलने वाला, ऐसा, या कि इनका कितना मलिन शरीर है, नहाते धोते तो है नहीं, असुचि हैं, गंदे हैं, ये क्या अपना कल्याण कर पाएंगे, ऐसा कह देना ये संघ का अवर्णवाद है। और धर्म अहिंसा तो श्रेष्ठ है, लेकिन उसे नहीं मानना और उल्टा कह देना कि अहिंसा से कल्याण नहीं होता बल्कि अकल्याण होता है, ऐसा मन में भाव भी आ जाना तो कहते ये धर्म का आवरणवाद। और देवलोक, अरे देवता लोग तो मांस भक्षण करते हैं और सुरापान करते हैं, ऐसा कह देना ये देवों का आवरणवाद है। सेलेस्टियल बींग, स्वर्ग के देव सबसे सुंदर होते हैं, वे सुरा इत्यादि का पान नहीं करते, वे तो कंठ में अमृत उनके झरता है, मानस आहार करते हैं, उन पर ऐसा दोष लगा देना यह देवों का अवर्णवाद है। इससे भी हमारे मिथ्यात्व बंधता है, दर्शन मोहनी बनती, हमारे सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह और भी बहुत से दोष हैं जो कि मोहनी कर्म के, दर्शन मोहनी के आश्रम में कारण हैं। कषायोदयात् तीव्र परिणामास् चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय में होने वाला जो आत्मा का तीव्र परिणाम है वो चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय बनता है। होता क्या है कि कर्म का उदय तो थोड़ा आता है, बाह्य वातावरण मिला करके अपन उसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी कोई ने अपने मन की बात नहीं करी, थोड़ा सा गुस्सा आओ और फिर बाद में अपन ने अपने हाथ से और बढ़ा लिया। हाँ, ये अपन करते हैं, कर्म की उदीर्णा करवा देते हैं जिससे कि और कषाय बंधने लगती है। किसी ने अगर कोई एक बात अपने मन की नहीं कही तो उसी समय ठीक है, हटाओ उस चीज को, हल्का कर दो, नहीं तो अब भी और तेजी से हम और तीव्रता से कषाय करेंगे और फिर कषाय करेंगे तो और कर्म का बंध होगा, चारित्र मोहिनी ही बंधेगी। इसलिए वहां से हट जाएं या कि चुप हो जाएं और उस वातावरण को हल्का बना दें, नहीं तो और कषाय बंधेगी। कषाय थोड़ी सी है, वो कह रहे हैं कि कषाय का उदय आया और उस समय आपने और तीव्र परिणाम कर लिए कषाय के, तो फिर और नई कषाय बंधेगी। और इतना ही नहीं, इसमें लिखा है कि स्वयं कषाय करना, दूसरे को कषाय उत्पन्न करवा देना, तपस्वी जनों के व्रतों में दोष लगा देना, इससे भी और संक्लेश उत्पन्न करने वाले वेश और व्रत धारण कर लेना। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि व्रत नियम उतने ही धारण करो जिससे संक्लेश ना हो, संक्लेश होएगा तो और कषाय का बंध होगा। सावधानी पूर्वक व्रत नियम करना, अपनी सामर्थ्य पहचान करके और सच्चे धर्म का मखौल उड़ाना, गरीब जनों का मजाक उड़ाना, व्यर्थ में बकवाद करते बैठे रहना, गोशिप हंसी ठट्टा करना, ये सब जो है कषाय के बंध के कारण है। अपन कहते तो हैं कि हमको कषाय ना बंधे और हमारी कषाय ना बढ़े, उसके लिए उपाय करना चाहिए, बहुत सारे लिखे हैं। बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकश्चायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने का भाव होना ये नरक आयु के बंध का कारण है। इसको तो एक अच्छा बढ़िया, जैसे बाहर बैनर लगे रहते ना, वैसा एक बैनर बनवा लेना चाहिए इसको, मैं बहुत अधिक आरंभ और परिग्रह करता हूँ, मैं नरक जाऊंगा, ऐसा। और जब घर लौटे अपन तो जरूर रोज पढ़े उसको, कितना पापकारी करता हूं, कितना परिग्रह संचित करके रख रहा हूं, जबकि अल्पारंभ परिग्रह तो मानुषस्य, मैंने अल्प आरंभ किया होगा, अल्प परिग्रह रखा होगा, इसलिए मनुष्य बना हूं। और अब मैं कर रहा हूं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, जाऊंगा कहां, नरक जाऊंगा। इससे सूत्र को पढ़ करके और ऐसा अपने को विचार करना चाहिए। माया तैरग्यो नश्य, मायाचारी करने से तिरंच पर्याय मिलती है, और सावधान हों हम कि हम मायाचारी ना करें। इतना ही है, उसमें लिखा है विनम्रता होना, सज्जनता होना, सीधा सच्चा व्यवहार करना, स्वभाव से ही मृदुता होना, नेचुरल माइल्डनेस जिसको कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब अपन ने कैसा करा होगा जब अपन मनुष्य बने हैं, ये विचार करो कि अपन पहले मनुष्य बने हैं तो विनम्र रहे होंगे, सज्जन रहे होंगे, सरल व्यवहार रहा होगा, मृदुता का स्वभाव रहा होगा, तब ये इन कारणों से मनुष्य बने हैं। और अब अगर अपन इन चीजों को नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, ये विचार करने की चीज। स्वभाव मार्दवम चा, लिखा हुआ है कि स्वभाव से जिसके अंदर मृदुता होती है वो मनुष्यायु का बंद करता, अपन ने मनुष्य आयु बांधी है तो अपने स्वभाव में मृदुता रही होगी तब तो अपन मनुष्य बने हैं, और अगर अब भी कठोरता आ जाएगी तो आगे कहां जाएंगे, ये स्वयं ही डिसाइड हो जाता है। निश्चील व्रतित्वम च सर्वेशाम, और अगर व्रत शील से रहते हैं, शील से भी रहते हैं, व्रतों से भी रहते हैं, तो फिर जो है कोई भी आयु का आश्रय हो सकता है, सभी प्रकार की आयुओं का आश्रय हो जाता है। इसमें एक चीज विशेष रुकी है कि ये देवायु सभी देवायुओं का आश्रय नहीं होता इसके द्वारा, ये तो आगे वाले सूत्र में कहेंगे कि जो विशिष्ट देव हैं उनके लिए तो सम्यक दर्शन आवश्यक है। निश्चील व्रतित्वम च सर्वेषाम, इस सूत्र में सामान्य रूप से चारों प्रकार की आयु के बंध का कारण बता दिया है, फिर अलग से देवायु के लिए बता रहे हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य, सराग संयम का पालन करना और संयमा संयम अर्थात देशव्रत महाव्रत दोनों हो गए, और अकाम निर्जरा मजबूरी में जो कर्मों की निर्जरा होती है, जैसे कि अब सुबह से शाम तक जो है दुकान में फुर्सत ही नहीं मिल पाई कि खाना खा सके, तो खाने नहीं खा पाया, तो उसमें जो कर्मों की निर्जरा हुई वो सब अकाम निर्जरा कहलाएगी। इधर जेल में बंद कर दिया जाता है तो क्या जमीन पे सोना पड़ता है, और रात में जो है ठीक से नींद भी नहीं आ पाती, कितनी कितनी मुश्किलें होती हैं। उस समय जो कर्मों की निर्जरा होती मजबूरी में, वो सब अकाम निर्जरा कहलाएगी। इससे भी देवायु बंध सकती है, लेकिन बड़े वाले देवों की आयु नहीं बने बंधेगी, वनवासी व्यंतर इत्यादि देवों की आयु बंधेगी। बाल तप करना अर्थात मिथ्यात्व के साथ में जो भी तपस्या की जाती है उससे भी देवायु बनती, लेकिन खोटी आयु देवों की आयु बनती। सम्यक तम चा, सम्यक दर्शन से जो देवायु बनती है वो तो स्वर्ग के देव वैमानिक देवों की आयु का ही बंध होता सम्यक दर्शन के साथ में। अपन को यदि सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है, तत्वार्थ का श्रद्धान है, तो एकमात्र आयु बंधेगी देवायु, और कोई ने व्रत नियम ले लिए हैं तब तो फिर हो गया कि उसके तो फिक्स है, और जिसके व्रत नियम लेने का भाव नहीं है बिल्कुल भी मन में, तो समझना या तो खोटी आयु बंध गई है या बंधेगी तो खोटी बंधेगी। ये इसका कहना चाहिए कर्म क्लियर है उसमें। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः, मन वचन काय की वक्रता होना और विसंवाद करना, तेरा मेरा करना, ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। हाँ, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, उसमें से जो अशुभ प्रकृतियां हैं वे सब मन वचन काय की कुटिलता और विसंवाद, इन दोनों से ही जो है बंधती हैं। और विपरीत तद विपरीतम शुभस्य, अगर मन वचन काय की सरलता होगी और विसंवाद नहीं करेंगे, संतोष पूर्वक जिएंगे, तो फिर शुभ नाम कर्म का बंधन आश्रय होगा। अब कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया पुण्य प्रकृति कौन सी है नाम कर्म की, तीर्थंकर। वो कैसे बनती, देखो, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रते स्मृति चारो वीक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयाव्रत करण महाराचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति रवश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सरत्मित तीर्थकर। ये अपन ने 16 कारण भावनाएं पहले भी इनको अपन ने समझ लिया है, इसलिए इसको तो अपन ने जल्दी से खत्म कर दिया, क्योंकि 16 कारण भावनाएं सबको मालूम है। अब उनके अलग अलग क्या अर्थ बताएं, हम रोज 16 कारण पूजा भी करते हैं, उसमें सबके अर्थ हैं। इन ऐसे 16 कारण भावना के जो निर्मल परिणाम हैं उससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। एक ही सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्रकृति है। परात्म निंदा प्रशंसे सत्सदगुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य, पर की निंदा करना, आत्म प्रशंसा करना, दूसरे के अच्छे गुणों को ढांकना और उसके अवगुणों को प्रकट करना, ये सब नीच गोत्र के बंध के कारण हैं। और नीच गोत्र का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता मिथ्यात्व के साथ, तो जब जब भी दूसरे की निंदा करने का भाव आए तो समझ लेना कि गुण स्थान नीचे गिर गया, मिथ्यात्व में आ गए, और अब नीच गोत्र बंध रहा होगा। उसी क्षण देरदार का काम नहीं है। ये इस सूत्र के पढ़ने का इतना ही है, परिणाम संभालना। और इसीलिए तो आचार्य ने कहा कि इसको तो बांसते रहो बार बार, तो परिणाम संभल जाएंगे। नहीं तो पर निंदा सच्चे झूठे दोषों को, जिसके अंदर वास्तव में दोष हैं उनको भी नहीं कहना, वो कह रहे हैं जो दोष हैं उनको भी नहीं, जो नहीं है उनको तो छोड़ो, जो दोष उनके भीतर हैं वो भी नहीं कहना, वो भी पर निंदा कहलाएगी, और अपने अंदर जो गुण हैं उन गुणों को भी नहीं कहना, जो नहीं है उनको तो कहने ही नहीं। अपन तो जो गुण नहीं है भी अपने गुण बताओ फिरत के हम में जी गुण है, वो कह रहे हैं कि जो गुण है वे भी नहीं कहना, तब कहलाएगी आत्म प्रशंसा से बच गए आप। नहीं तो आत्म प्रशंसा से तो बहुत मुश्किल है, अपन खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा भली न करें, मनो अपने कान हमेशा तैयार रहे सुनवे के लाने के, को कह रहा हो हमारे बारे में बढ़िया, वो ही हमारा हितैषी है, जबकि वो हमारे लिए बिगाड़ने ही वाला है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है भैया। सद्गुणों को देखो, दूसरे के गुणों को तो उघाड़ना, अपने गुणों को ढकना, और अपने दोषों को प्रकट करना और दूसरे के दोषों को ढकना, सही बात तो ये है, लेकिन अपन करते हैं उससे उल्टा। अपने दोष तो ढक लेते हैं, दूसरे के उघाड़ देते हैं, और अपने गुणों को ढकना चाहिए सो अपने गुण तो बताते फिरते हो, दूसरे के गुणों को ढक लेते हैं, इससे नीच गोत्र का बंध होता है। इस तरह तद विपर्ययौ नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चोतरस्य, नीच गोत्र से विपरीत जो उच्च गोत्र है उसके बंध के क्या कारण है, तो दूसरे की प्रशंसा करना, अपनी आत्मनिंदा करना, और नीचैर्वृत्यै हमेशा नम्र वृत्ति करना, हमेशा नम्रता का व्यवहार करना, निरभिमानता अभिमान नहीं रखना, इससे उच्च गोत्र, अपन विचार करो कि अपन को ऊंचा कुल मिला है, ऊंचा गोत्र मिला हुआ है, ऊंचा गोत्र कौन सा है, जहां रत्नत्रय की परंपरा हो, जहां व्यसन्न होते हो, जहां की सदाचरण का पालन किया जाता हो, वो ऊंचा गोत्र है। अपन ने कैसे पाया होगा, बड़ी विनम्र प्रवृत्ति रही होगी, अभिमान नहीं रहा होगा दूसरों की, अपन ने प्रशंसा करी होगी, अपनी निंदा करी होगी, जिससे अपन को ऊंच गोत्र मिला, और अब अगर अपन दूसरे की निंदा करें, अपनी प्रशंसा करें और अकड़ करके चलें, तो क्या होगा, नीच गोत्र मिलेगा, ऐसा विचार कर लेना चाहिए इससे। और विघ्न करणम अंतरायस्य, कहा तो हमने था कि ज्यादा समय ले लेंगे, लेकिन फिर सही समय पर हो गया। दूसरे के कार्यों में विघ्न डालना अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। कोई दान दे रहा है, अरे क्या होने वाला है, काय को दे रहे हो, ले आपके लिए दानांतराय का बंद हो जाएगा। दान देने की भावना होते हुए भी फिर दान नहीं दे पाएंगे, भावना होने पर भी सारे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे कि दान दूं, लेकिन एक ना एक बाधा आ जाएगी और आप दान नहीं दे पाएंगे।